हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्यांश के कहने पर दीवा अपने घर रहने के लिए चली आई थी। उसके इस अचानक फैसले पर प्रार्थना को दीवा पर शक जरूर हो रहा था कि यकीनन आर्यांश और दीवा के बीच किसी तरह की अनबन हुई है। ऊपर से दीवा की आंखें भी रोने की वजह से सूजी हुई थी। दीवा ने जैसे तैसे बहाना बनाकर प्रार्थना को मना लिया था। शाम को उनके घर पर डिनर के वक्त पहले की तरह काफ़ी रौनक थी। दीवा काफ़ी दिनों बाद उनके साथ रहने के लिए आई थी, इस वजह से नवीन और प्रार्थना दोनों ही बेहद खुश थे। वे सब हंसते बातें करते हुए साथ में खाना खा रहे थे। इसी बीच घर की डोरबेल बजी। प्रियंक दीवा से मिलने के लिए आया था। उसे अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए दीवा की ज़रूरत थी, इसलिए वो लगातार उस पर नज़र बनाए हुए था। जैसे ही उसे पता चला कि दीवा गोयनका मेंशन रहने के लिए गई है, उसे लगा कि दीवा से अकेले में बात करने का ये सबसे अच्छा मौका है। हाउस हेल्पर के साथ जब प्रियंक गोयनका मेंशन के डाइनिंग एरिया में पहुंचा, तो उसे देखकर दीवा थोड़ी हैरान हुई, पर अपनी फैमिली के सामने उसने नॉर्मल बिहेव करते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, मॉम डैड, ये प्रियंक है, आर्यांश का कजिन। ओ, तो तुम मिस्टर सौरभ बजाज के बेटे हो, वहाँ क्यों खड़े हो बेटा, यहाँ आओ, हमें ज्वाइन करो, नवीन ने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया। दीवा आर्यांश की गैर मौजूदगी में प्रियंक से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन वो खुद चलकर उसके घर आ गया था। ऊपर से नवीन प्रियंक को डिनर के लिए भी बुला रहे थे। दीवा ने जल्दी से मना करने के लिए अपना मुँह खोला ही था कि प्रियंक मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच अंकल, आज मैं लंच भी नहीं कर पाया था और अब शाम को किसी काम के चलते दीवा से मिलने आना पड़ा। आई मस्ट से मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। बिल्कुल सही कहा, चलो आ जाओ, और मुझे वे बच्चे पसंद हैं जो फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, प्रार्थना बोली। उसने बैठने के लिए अपने पास वाली जगह पर प्रियंक को बुलाया। दीवा ने प्रियंक की तरफ देखा और अपने गुस्से को काबू करके ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मिस्टर बजाज, आज आपने यहाँ आने का कैसे सोचा? कम ऑन, अब मिस्टर बजाज कहकर रिश्ते को फॉर्मल मत करो, आर्यांश मेरा भाई है और जिस हिसाब से मेरी बुआ तुम दोनों के रिलेशन को लेकर एक्साइटेड हैं, जल्द ही तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। वैसे तो मैं आर्यांश से थोड़ा बड़ा हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, प्रियंक बोला। वो ऐसे जता रहा था मानो उसका और आर्यांश का रिश्ता कितना ही गहरा हो, जबकि दीवा उनके रिश्ते का सच अच्छे से जानती थी। प्रियंक की बातों से ऐसा लग रहा था कि आर्यांश की मॉम दीवा और आर्यांश के रिश्ते के बारे में सब जानती हैं। मन ही मन प्रार्थना को ये सोचकर कुछ तसल्ली हुई कि आर्यांश और दीवा के रिश्ते को उसकी फैमिली की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। दीवा, तुमने बताया नहीं कि तुम मिसेस कपूर से मिल चुकी हो, कभी उन्हें हमारे यहाँ भी इन्वाइट करो, प्रार्थना ने दीवा से कहा। हाँ, मैं उनसे दो बार मिल चुकी हूँ और वे काफ़ी स्वीट हैं, अगली बार मिलूंगी तो उन्हें ज़रूर इन्वाइट करूंगी, दीवा ने बहाना बनाया। उसकी बात पर सहमति जताते हुए प्रियंक तुरंत बोला, ये बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरी बुआ बहुत स्वीट हैं, कई बार तो लगता ही नहीं कि आर्यांश उनका बेटा है, आर्यांश का बिहेवियर काफ़ी कोल्ड और रूड है, बुआ तो कई बार मजाक में ये तक कह देती हैं कि उन्होंने पूरा ध्यान रखा था, फिर भी कहीं उनका बच्चा हॉस्पिटल में चेंज तो नहीं हो गया था, मिसेस कपूर भी ना, नवीन हंसकर बोले, तुम दोनों की बातों से लग रहा है कि उनसे मिलना ही पड़ेगा। हाँ ज़रूर, मैं तो कहता हूँ एक फैमिली डिनर अरेंज करते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, बुआ इस बात के लिए मुझे ज़रूर थैंक्स कहेंगी, उन्हें दीवा बहुत अच्छी लगती है, ये तो दीवा और आर्यांश भी अलग घर में रहते हैं, वरना अगर सब साथ रहें तो वे बहुत खुश होंगी, प्रियंक ने सिर हिलाकर कहा। प्रियंक जैसा इंसान जो साइकोलॉजी में मास्टर था, वो अच्छी तरह जानता था कि किस इंसान के साथ किस तरह घुलना मिलना है। उसने कुछ ही मिनटों में भांप लिया था कि दीवा की फैमिली के लिए उसकी और आर्यांश की शादी कितनी ज़रूरी है, और वो बातचीत को उसी चालाकी से आगे बढ़ा रहा था। नवीन और प्रार्थना भी प्रियंक से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, वहीं दीवा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और वो बहुत कम बोल रही थी। दीवा ने मन ही मन सोचा, कहीं कियाना की तरह इसे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कि मेरा और आर्यांश का ब्रेकअप हो गया है, नहीं, अगर ऐसा होता तो ये बार बार आर्यांश की मॉम और हमारी शादी का जिक्र नहीं करता, जो भी हो ये यकीनन अच्छे इरादे से यहाँ नहीं आया है, क्या आर्यांश को पता भी है कि ये मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया है? दीवा अपनी उधेड़ बुन में इतनी खोई हुई थी कि उसका खाने में ध्यान तक नहीं था। ये चीज़ प्रियंक ने नोटिस की और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है डॉक्टर गोयनका को भूख नहीं है, तभी खाने के साथ खेल रही हैं, वैसे मेरा डिनर हो गया है, क्यों ना हम अकेले में कुछ बात करें, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तभी यहाँ आया था। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो, दीवा ऐसा करो तुम बाद में खा लेना, पहले मिस्टर बजाज से बात कर लो, प्रार्थना ने दीवा की तरफ देखकर उसे प्रियंक के साथ जाने का इशारा किया। वो नहीं चाहती थी कि आर्यांश का कजन दीवा से बात करने के लिए और इंतजार करे। दीवा ने उनकी बात पर हामी भरी और उठकर प्रियंक के साथ लिविंग एरिया में आ गई। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर किस इरादे से प्रियंक यहाँ तक चला आया है। लिविंग रूम में आते ही दीवा ने प्रियंक की तरफ घूर कर देखा और कड़े शब्दों में कहा, बोलिए मिस्टर बजाज, आपको ऐसा भी क्या कहना था जिसके लिए आप मेरे घर तक चले आए? लगता है डॉक्टर गोयनका को मेरा उनके घर आना पसंद नहीं आया, या मैं ये समझूं कि आपसे ज्यादा आर्यांश को इस बात से दिक्कत है, प्रियंक ने भौहें उठाकर पूछा। दीवा को उसके इस बर्ताव से सख्त चिढ़ थी। बातों ही बातों में वो सामने वाले के राज उगलवाने में माहिर था। पिछली बार भी दीवा ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने दीवा के बारे में एक ही मुलाकात में काफी कुछ पता लगा लिया था। इस बार दीवा उससे बात करते हुए खास सावधानी बरत रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे वे लोग पसंद नहीं है जो बिना इन्फॉर्म किए डायरेक्ट पर्सनल मीटिंग के लिए आ जाते हैं। हाँ, हमारी डॉक्टर गोयनका को तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की आदत है ना, प्रियंक ने तंज कसा। देवा ने उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखा तो प्रियंक हंसते हुए बोला, ऐसे मत देखो कि मैं घायल हो जाऊं, तुम्हारे आर्यांश को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। खैर, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, यही बेहतर होगा, दीवा बोली। वो जल्द से जल्द प्रियंक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। शायद आर्यांश ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा कि एक वीक बाद आर्यांश के दादाजी की बर्थडे पार्टी है। ये कोई आम बर्थडे पार्टी नहीं है, इस बार उन्होंने इस खास मौके पर आर्यांश की शादी अनाउंस करने का सोचा है, प्रियंक ने गंभीर आवाज में कहा। आर्यांश ने दीवा के सामने अपने दादाजी के बर्थडे और शादी को लेकर उनके इरादों के बारे में पहले ही बताया था। वे कियाना को पसंद करते थे, ऐसे में आर्यांश ने यही सोचा था कि वो उस बर्थडे पार्टी में कियाना को सबके सामने एक्सपोज कर देगा। दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सुनती रही। तभी प्रियंक आगे बोला, मेरे सोर्सेस से पता चला है कि इस बर्थडे पार्टी में आर्यांश कियाना के साथ जाने वाला है। वे दोनों बस फैमिली फ्रेंड्स हैं, इस नाते साथ जा रहे हैं, दीवा ने जवाब दिया। वो ऐसे जता रही थी जैसे उसे सब पहले से ही पता हो,
जबकि हकीकत में आर्यांश ने उसे कियाना के साथ जाने की बात नहीं बताई थी। दीवा के चेहरे पर आई हल्की परेशानी को भांपते हुए प्रियंक बोला, तुम्हारी बातें यही जता रही हैं कि उसने तुम्हें इस बारे में बताया होगा। ठीक है, फिर एक बात क्लियर कर देता हूँ, बर्थडे पार्टी में आर्यांश के साथ जाने वाली लड़की सच में बहुत मायने रखेगी। वहाँ उनकी पूरी फैमिली से लेकर हर वो जाना माना बिजनेसमैन मौजूद होगा जो उनके बिजनेस और फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ऐसे में आर्यांश इस रिश्ते से पीछे नहीं हट पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करेगा और कियाना से शादी करने से मना कर देगा? तो तुम मुझे यहाँ आर्यांश के खिलाफ भड़काने आए हो, दीवा ने दांत पीसते हुए कहा। भड़काने नहीं आया हूँ, तुम्हारे सामने आर्यांश की असलियत साबित करने का मौका देने के लिए आया हूँ। कभी सोचा है कि आर्यांश अपने पहले प्यार से इतना प्यार करता था कि उसके जाने का गम तक नहीं भुला पाया, फिर भी उसके बारे में कोई जानता क्यों नहीं है? ना ही कोई फोटो और ना ही कोई नाम। जबकि कियाना की बात करें तो हर कोई जानता है कि कियाना का कपूर फैमिली के साथ क्या रिश्ता है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि उन दोनों की सीक्रेट एंगेजमेंट हो चुकी है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर आर्यांश को उस लड़की से इतना ही प्यार था तो उसने पहले सबके सामने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था, या वो कभी ऐसा करना ही नहीं चाहता था? कुछ लोगों के लिए प्यार से ज्यादा मायने बिजनेस रखता है, आर्यांश जैसे लोगों के लिए खासकर। प्रियंक ने पॉइंट टू पॉइंट अपनी सारी बात रखी थी। उसकी बातें काफी लॉजिकल थीं, जिन पर कोई भी आसानी से इनकार नहीं कर सकता था। दीवा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वहीं उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। ये प्रियंक की अपने मकसद की तरफ पहली जीत थी। उसकी बातों ने दीवा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रियंक फिर बोला, चलो फिर भी अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं या तुम्हें इस बात की गलतफहमी है कि आर्यांश इस पार्टी में कियाना से शादी करने से मना करने के लिए जा रहा है, तो अपनी ये गलतफहमी दूर करने के लिए तुम खुद वहां मौजूद रह सकती हो। और वो कैसे, दीवा ने हैरानी से पूछा। सिंपल सी बात है, अगर आर्यांश कियाना से शादी करने के लिए मना करेगा तो सबके सामने तुम्हें भी तो इंट्रोड्यूस करेगा ना, ऐसे में उसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए, प्रियंक ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। दीवा बिल्कुल शांत हो गई। प्रियंक को उसके मन के भाव समझते देर नहीं लगी। वो चौंकने का दिखावा करते हुए बोला, अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए पूछा ही ना हो? ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे हॉस्पिटल से आसानी से छुट्टी नहीं मिल पाती है, दीवा ने हड़बड़ाते हुए सफाई दी। मजाक कर रही हो क्या? हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा शेयर्स आर्यांश कपूर के हैं और तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है? खैर छोड़ो, मैं बस ये चाहता हूँ कि सच जानने के लिए तुम्हारा वहां होना जरूरी है। आर्यांश ना सही, लेकिन तुम मेरे साथ चल सकती हो, प्रियंक ने अपना अगला दांव खेला। दीवा जैसे लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा लेना प्रियंक के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने दीवा के सामने जाहिर कर दिया कि वो किस खास मकसद से वहां आया था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, आर्यांश ने अभी मुझे इस बारे में पूछा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे साथ लेकर नहीं जाएगा, दीवा ने फिर बहाना बनाया। ठीक है, आर्यांश बोले तो उसके साथ चले जाना, वरना मैं यही चाहता हूँ कि तुम पार्टी में मौजूद रहो। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी और उसके रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे मॉम डैड को ये यकीन नहीं दिलाता कि आर्यांश की फैमिली तुमसे मिल चुकी है। मैंने तुम्हारी मॉम की आंखों में देखा था, तुम्हारे अचानक घर आने पर वे थोड़ी परेशान नजर आ रही थीं। उन्हें लग रहा होगा कि आर्यांश ने टाइम पास करके तुम्हें छोड़ दिया होगा, प्रियंक बोला। दीवा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बांध ली थीं। उसने पूरी सतर्कता दिखाई थी, लेकिन फिर भी प्रियंक ने उसके दिल के भावों को पढ़ लिया था। न सिर्फ उसके, बल्कि उसने प्रार्थना की परेशानी को भी अच्छे से भांप लिया था। जब भी तुम्हारा इरादा बदले, बस एक मैसेज कर देना, प्रियंक बोला। उसने जबरदस्ती दीवा के हाथ से उसका मोबाइल लिया और उसके चेहरे के आगे करके उसे अनलॉक कर लिया। उसने जबरदस्ती दीवा के साथ नंबर एक्सचेंज किया और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दीवा वहां काफी देर तक परेशान खड़ी रही। उसकी घबराहट की एकमात्र वजह प्रियंक की वे बातें थीं। नव्या ने कियाना का सच बता दिया था, फिर भी आर्यांश अभी भी कियाना के साथ सब ठीक होने का दिखावा कर रहा था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन प्रियंक की बातें कुछ और ही इशारा कर रही थीं। दीवा ने मन ही मन उलझन भरे स्वर में कहा। दीवा अपनी कश्मकश में उलझी हुई थी कि उसे आर्यांश पर यकीन करना चाहिए या नहीं। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन टोन बजी। उसे प्रियंक का मैसेज आया था। प्रियंक ने उसे एक फोटो भेजी थी जिसमें आर्यांश कियाना के साथ अपने घर में बैठकर आराम से खाना खा रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो फोटो देखकर दीवा के यकीन को एक गहरा झटका लगा। तो क्या यही वजह थी कि आर्यांश ने उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेजा था और खुद से दूर रहने को कहा था? यहाँ से आर्यांश और दीवा की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वैसे एक बात बता दूं कि कई बार जो हीरो लगता है वो विलन होता है, और जो विलन लगता है वही कब हीरो वाला काम कर जाए पता नहीं चलता। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।